एहेस्केल अध्याय 31। आइए एहेस्केल की पुस्तक का अध्याय 31 खोलें। अध्याय 29 और 30 में वो मिस्र पर आने वाले परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी कर रहा था। इसराइलियों ने उसका सहारा लेना चाहा था, परंतु वो सरकंडा सिद्ध हुआ जो समय आने पर टूट गया और हानि इसराइल की ही हुई। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे मिस्र पर निर्भर ना करें, परंतु उन्होंने सुना नहीं। निस्संदेह फिरौन हाइब्रे ने अपनी सेना भेजी और एक बार तो नबूकदनेज़र की सेना को यरूशलेम के घेराव से रोक दिया था, परंतु अंत में वो टूटे हुए सरकंडे की नाई उन्हें रोकने में असफल रहा। अब अध्याय 31 में वो फिरौन के विरुद्ध भविष्यवाणी देता है। वो एक दृष्टांत स्वरूप फिरौन को लबनोन का देवदार पेड़ कहता है। लबनोन अपने बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के लिए मशहूर था। आपको ध्यान होगा कि सोर और हिराम के राजाओं ने सुलेमान और उसके पिता दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि वे मंदिर निर्माण के लिए उन्हें देवदार उपलब्ध कराएंगे, जिसकी आवश्यकता यरूशलेम के मंदिर को बनाने में पड़ी थी। अतः परमेश्वर फिरौन की तुलना लेबनोन के विशाल देवदार वृक्ष से करता है। एहेस्केल अध्याय 31 पद 1। 11वें वर्ष के तीसरे महीने, सिदकिया राजा के 11वें वर्ष अर्थात 586 ईसा पूर्व। एहेस्केल अध्याय 31 पद 1 और 2। पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है। निस्संदेह मिस्र प्राचीन संसार का एक महान एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। वो विश्व के मुख्य राष्ट्र में गिना जाता था जो उस युग में संसार पर प्रभुता करते थे। इस कारण मिस्र सदा ही निर्भर करने योग्य शक्ति माना जाता था। तू किसके समान है? एहेस्केल उसकी तुलना अशूरों से कर रहा था, क्योंकि वे भी उस समय की विश्व शक्ति थे। उन्होंने इसराइल के उत्तरी राज्य को अपने अधीन किया था, अतः वे भी अपने युग की एक महान शक्ति थे। एहेस्केल अध्याय 31 पद 3 और 4। देख, अशूर तो लेबनोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, गहरा जल अर्थात नील नदी। एहेस्केल अध्याय 31 पद 4 में आगे लिखा है, उस गहरे जल के कारण वो ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। नील नदी का डेल्टा क्षेत्र जो अत्यधिक उपजाऊ होता है। एहेस्केल अध्याय 31 पद 5 और 6। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। सब प्रकार के पक्षी अर्थात मिस्र अन्य देशों पर छाया हुआ था। दानियल की पुस्तक में नबूकदनेज़र और बाबुल साम्राज्य के लिए भी यही कहा गया है। यदि हम नए नियम में देखें तो यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था, लूका अध्याय 13 पद 19। स्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। पक्षियों को नए नियम में शैतान माना गया है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में आकाश के पक्षी सड़क के किनारे गिरे बीज को खा लेते हैं, अर्थात शैतान मनुष्यों के मन में से परमेश्वर के वचन को चुग लेता है और वो वहां जड़ नहीं पकड़ता। इस दृष्टांत में राई के पौधों का विकास असाधारण है कि वो एक पेड़ बना और आकाश के पक्षियों ने उसमें बसेरा किया। ये वास्तव में अन्य जातियों की कलीसिया के विषय एक दृष्टांत है कि वो बहुत बड़ी होगी। आज जब हम देखते हैं तो इस विशाल पेड़ में अनेक प्रकार के पक्षी बसेरा किए हुए हैं। ये बड़े ही अचंभे की बात है कि कलीसिया में विचित्र बातें विश्वास के साथ जोड़ दी गई है। ये हमें प्रभु यीशु मसीह के शब्दों की याद दिलाता है। मती अध्याय 7 पद 21, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु के कहने का अर्थ था कि राई का पेड़ अर्थात अन्य जातियों की कलीसिया बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आत्मिक स्वास्थ्य और विकास के लिए लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि वो पक्षियों अर्थात शैतान के लिए बसेरा करने का स्थान होगी। अब यहां उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, अर्थात यहां मिस्र की छत्र छाया में अनेक राष्ट्र एवं जातियां शरण पा रही थी। उसने उन्हें जीता था। एहेस्केल अध्याय 31 पद 7 से लेकर 9 तक, वो अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको ना छिपा सकते थे। सनोवर उसकी टहनियों के समान भी ना थे और ना अर्मोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत के सुंदर बनाया था, यहां तक कि एदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उसे डाह करते थे। ये महान देवदार अर्थात मिस्र ऐसा बड़ा राष्ट्र था कि अन्य राष्ट्रों की ईर्ष्या का कारण था। एहेस्केल अध्याय 31 पद 10 और 11, इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा और वो निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। यहां फिरौन पर परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी है, क्योंकि वो घमंड से भर गया था कि वो बहुत महान और वैभवशाली है। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 16 पद 18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। शक्ति और सामर्थ्य के पद को संभालना मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है। मेरे विचार में संसार का सबसे कठिन काम है मनुष्यों पर अधिकार का स्थान संभालना। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपना ही गुणगान करता है, देखो मैंने क्या किया, और इस प्रकार वो घमंड से भर जाता है। हम दानियल की पुस्तक के अध्याय में देखेंगे कि नबुकदनेस्सर घमंड से भरा हुआ अपने हैंगिंग गार्डन में टहल रहा था, जो प्राचीन संसार के सात आश्चर्य कर्मों में से एक था। वो अपने बनवाए हुए उस भव्य नगर को देख रहा था। उसने 300 फुट ऊंची और 80 फुट चौड़ी शहरपनाह को देखकर कहा, क्या ये महान बाबुल नहीं जिसे मैंने बनवाया? तब उसे एक आवाज सुनाई दी, देखने वाले तुझे देख रहे हैं, तेरा मन घमंड से भर गया है। वो घबराया हुआ दानियल के पास आया और उससे कहा कि उसने ऐसी आकाशवाणी सुनी है। दानियल ने कहा, सावधान रह कि तू कैसे चाल चलन रखता है। एक वर्ष बाद फिर वो अपने ऊपर घमंड कर रहा था कि उसने एक अनुपम नगर का निर्माण किया और फिर आकाशवाणी हुई, बस बहुत हुआ, तेरा समय आ गया। वो पागल हो गया और 7 साल जंगल में जानवरों के साथ रहकर बैल के समान घास खाता था। उसके बाल बड़े बड़े हो गए थे, उन पर ओस जमती थी। वो एक जंगली मनुष्य का सा जीवन बिताने लगा। तब उसे बोध हुआ कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसे चाहता है उसे किसी राज्य के सिंहासन पर बैठाता है। घमंड ही ने नबूकदनेस्सर को 7 साल तक जानवर बनाकर रखा था। जब परमेश्वर ने उसका कल्याण किया तब उसने घोषणा की कि स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो जिसे चाहे उसे राज सिंहासन प्रदान करता है। संपूर्ण इतिहास में घमंड एक महान विनाशक है जिसने अनेकों का विनाश किया है। शेक्सपियर अपने एक नाटक में कहता है, क्रॉमवेल घमंड से दूर भाग, क्योंकि इसी पाप के कारण स्वर्ग दूतों का पतन हुआ है। शैतान ने कहा था, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। ये फिरौन भी घमंड से भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है, जातियों में जो सामर्थ्य है मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वो निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। अन्य जातियों में अति प्रतापी राजा नबूकदनेस्सर था। यरमिया भी यरूशलेम वासियों में यही कह रहा था कि वे फिरौन पर भरोसा करके मिस्र पर निर्भर ना करें, क्योंकि यहोवा उन्हें गिरा देगा, वो किसी काम का सिद्ध ना होगा। परंतु वे ना माने और मिस्र को गए, जहां यरमिया ने तहपनेस में बड़े पत्थर गाड़ दिए और कहा कि इन पत्थरों पर नबूकदनेस्सर अपना सिंहासन स्थापित करके मिस्र पर राज करेगा, और ऐसा ही हुआ, इतिहास इसका गवाह है। एहेस्केल अध्याय 31 पद 12 से लेकर 18 तक। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे, उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएंगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। ये इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए, ना अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सर ना उठाएं, क्योंकि वे भी सबके सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वो अधोलोक, इब्रानी भाषा में यमलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढाप दिया, और नदियों को बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लेबनोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और एदन के सब वृक्ष अर्थात लेबनोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सभी ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। सो महिमा और बड़ाई के विषय में एदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो एदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मिस्र के फिरौन का विनाश और नरक में डाला जाना परमेश्वर ने नियत कर दिया था।